Stay tuned. MGU Positive.
नमस्कार लिसनर्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा ताशी आज फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के बीच एक नई कहानी लेकर। ये कहानी का टाइटल है बेसहारा कश्ती, और आज इस कहानी को अगेन मेरे साथ नराइट करने के लिए स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं सृष्टि मैम।
कितनी पत्थर दिल औरत है, अरे बेटी की मौत का जरा भी अफसोस नहीं।
कुछ इसी तरह के ताने नूरजहां बाकी तमाम औरतों के बीच गूंज रहे थे, लेकिन 32 साल की नरगिस के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि दुनिया के तानों से दूर डल झील का पानी उसके हौसले को सलामी दे रहा है। क्योंकि यही डल झील का पानी गवाह था नरगिस के उस दर्द भरी जिंदगी का, जिसमें कभी कश्ती चलाते वक्त उसके आंसू टपक जाया करते थे। नरगिस अपने माता पिता के साथ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक छोटे से घर में रहती थी। उस समय नरगिस को सिर्फ एक ही शख्स से बहुत प्यार था, वो थे उसके वालिद अब्दुल मोमिन, जो पेशे से एक केमिकल कंपनी के मजदूर थे।
ये क्या अब्बू, आज फिर आपको खांसी में खून आ गया? जब कंपनी ने आपको मुफ्त मेडिकल चेकअप की पॉलिसी दी है तो आप करवाते क्यों नहीं?
अपने पिता को पानी देते हुए नरगिस ने कहा, लेकिन अब्दुल के पास नरगिस के इन चुपते सवालों का कोई जवाब न था। अब्दुल अपने आप में ही गुनहगार सा महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटी के सवालों का जवाब देने में असमर्थ था। भला क्या जवाब देता हूँ नरगिस को, भला क्या जवाब देता हूँ नरगिस को? इसे विशेषता कहें या खामी, लेकिन एक मध्यम वर्गीय घरों के मुखिया की एक बात होती है, वो अपने ऊपर आई बड़ी से बड़ी समस्याओं को साझा नहीं करते। अब्दुल भी अपनी जिंदगी के उन्हीं हालातों में था। केमिकल कंपनी में काम करते हुए उसको विषैली गैसों के प्रभाव से पल्मोनरी अल्सरेशन जैसी बीमारी हो गई। आमदनी इतनी नहीं थी कि ठीक से इलाज हो सके, और ना ही जहन में इतने शब्द थे कि अपनी बेटी की बातों का जवाब दे पाता। नरगिस चुपचाप स्कूल के लिए निकल गई। सुना था नरगिस के स्कूल के रास्ते में एक नदी थी, जिसे कश्ती से पार करके स्कूल जाना होता था। उसी कश्ती में नरगिस की मुलाकात होती थी इमरोज से। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, इमरोज। इमरोज का लड़कपन का प्यार था नरगिस, और उस कच्ची उम्र में होने वाला प्यार। इमरोज नरगिस से बहुत प्यार करता था। इमरोज के अब्बू नदी में कश्ती चलाकर और मछलियां पकड़कर अपना परिवार चलाया करते थे। इमरोज और नरगिस दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, और उस दिन भी वो दोनों इमरोज के पिता की कश्ती में बैठकर स्कूल जा रहे थे। कहते हैं उस दिन नरगिस बहुत खूबसूरत लग रही थी, इमरोज तो बस उसे देखता ही रह गया। तेरी पलकों के खुलने से उगता होगा आफ्ताब कहीं, तेरी पलकों के खुलने से उगता होगा आफ्ताब कहीं, सुर्ख फलक पर छा जाता है उजाले का सैलाब कहीं, फिर दूर कहीं गुलशन में खिलते होंगे लाखों गुलाब, फिर दूर कहीं गुलशन में खिलते होंगे लाखों गुलाब, चुरा लूं सबकी नजर से जो तुझसा मिले गुलाब कहीं, यूं तो तुझसे सवालात करने से खूब डरता हूं, यूं तो तुझसे सवालात करने से खूब डरता हूं, मगर रहता हूं तेरे चार सू, काश मिल जाए कोई जवाब कहीं। नाव से उतरकर वो दोनों स्कूल की तरफ चल दिए। नरगिस भी इमरोज के इरादों को बखूबी वाकिफ थी, या यूं कहिए कि वो तो बस इमरोज के बोलने का इंतजार कर रही थी। आखिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर इमरोज ने नरगिस को बोला, नरगिस मुझे तुमसे कुछ बात करना है, इमरोज ने अपना सर खुजाते हुए कहा। नरगिस भी समझ गई, लेकिन उसने अपनी खुशियों पे काबू रखकर बड़े ही अकड़ू से अंदाज में पूछा,
क्या बात है इमरोज?
इमरोज के चेहरे पर तो 12 बजे हुए थे। थोड़ी मुश्किल से इमरोज ने कहा कि नरगिस मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नरगिस ने इमरोज की तरफ गुस्से से देखा, और फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुरा कर चली गई। इमरोज को उसका जवाब मिल गया था। उस दिन दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रहती। शाम को जब नरगिस घर आई तो उसके घर के एक कोने में अपनी माँ को बैठकर रोते हुए देखा। और सामने थी अपने पिता अब्दुल की लाश। नरगिस का तो गला सूख गया, उसे तो मानो ये पूरा आसमान एक भारी बोझ की तरह लगने लगा। उस दिन नरगिस अपने आप को दुनिया की सबसे अकेली महिला समझ रही थी, जब उसी के सामने उसके अब्बू का जनाजा उठाया जा रहा था, जब उसी के सामने उसके अब्बू का जनाजा उठाया जा रहा था। इस सदमे ने दिमाग पे बहुत गहरा असर डाला। वैसे ही नरगिस को भी इस सदमे से उबरने के लिए ठीक से तैयार भी नहीं थी कि एक भयंकर भूकंप ने कुपवाड़ा को तबाह कर दिया। इस भूकंप की चपेट में कई मासूम लोग आ गए, जिनमें नरगिस की माँ भी शामिल थी। उसी में इमरोज का पूरा परिवार तबाह हो गया, लेकिन जैसे तैसे इमरोज नरगिस को बचाकर वहां से भागने में कामयाब हुआ। रात उन्होंने एक आर्मी कैंप में शरण ली। राहत की सांस लेते हुए इमरोज ने नरगिस की तरफ देखा, उसे फक्त एक खालीपन के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आया। नरगिस को तो अपनी आंखों पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। नरगिस का हलक सूख चुका था, रोते रोते आंखें लाल हो चुकी थी। बेचारी नरगिस, शहर छोड़ते हुए उसने ठीक से अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा भी न देखा। शायद खुदा को यही मंजूर था। ये सोचते हुए नरगिस अपनी तकदीर को मन ही मन कोस रही थी। देखो नरगिस, हमारे मौजूदा सहारे तो हमसे छिन गए, लेकिन अब यही हमारे लिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे का सहारा बने। इमरोज ने नरगिस का हाथ थाम कर बोला। नरगिस ने भी इमरोज के इस फैसले का स्वागत किया। ना जाने कहां से आ गई थी उसमें ये सारे फैसले लेने की ताकत। इमरोज और नरगिस श्रीनगर आ गए। यहाँ उन्होंने अपना छोटा सा आशियाना बनाया, जो एक प्यार के मंदिर से कम नहीं था, जहाँ नरगिस इमरोज के साथ बेहद सुकून महसूस करती थी। शुरुआती दौर में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों के दरमियान इतना अटूट इश्क था कि सारी परेशानियां उन्होंने एक साथ झेल ली। जिंदगी बेहद सुकून से चल रही थी, मगर नरगिस को आज भी वक्त के पुराने पन्नों का एहसास होता था, जिसमें एक एक करके उसके सभी सहारे छिन गए। इधर इमरोज ने दिन रात कड़ी मेहनत करके कश्ती खरीदी और फिर उस कश्ती से वो अपने पुश्तैनी काम को अंजाम देने लगा। वो डल झील में अपनी कश्ती से सैलानियों को बिठाकर खूबसूरत वादियों में नज़ारों से रूबरू करवाता था। उन्हीं खूबसूरत वादियों से खुशनुमा हो गई थी इमरोज और नरगिस की जिंदगी, जब उनका छोटा सा खपरेल घर परवेज की किलकारियों से गूंजने लगा। जैसे ही परवेज बड़ा हो रहा था, नरगिस ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन शायद बस बदकिस्मती का नरगिस से जैसे पुराना ताल्लुक हो गया था। एक दिन झील के गहरे पानी में एक डूबती हुई महिला को बचाने के लिए इमरोज भी पानी में कूद पड़ा, और बदकिस्मती से ना तो इमरोज बच सका ना ही वो महिला। चार दिन बाद जब घर पर इमरोज की लाश आई, तो उसे देखकर नरगिस मानो जिंदा लाश की तरह खड़ी रही। अशकों का सैलाब नरगिस को डुबो गया। जिंदगी का हसीन वो हसीन सफर रिपीट जिंदगी का वो हसीन सफर जो उसने इमरोज के साथ तय किया था, मानो जैसे वो सब कुछ थम गया। वो 8 साल का परवेज, जिसके सर से बाप का साया उठ चुका था, अपनी रोती हुई माँ के आंसू पोंछ रहा था। दफनाने के बाद नरगिस ने खुदकुशी करने की ठान ली और देखा परवेज बाहर खेल रहा था। नरगिस ने दरवाज़ा बंद किया और चाकू से अपने आप पर वार करने ही जा रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। नरगिस ने चाकू को एक तरफ रखकर दरवाजा खोला। माँ, मुझे पानी पीना है। दरवाजे पर मासूम परवेज खड़ा था। परवेज को गले लगाकर नरगिस रो पड़ी, और जैसे नरगिस की रूह उससे कह रही थी कि
अब मजबूत हैं वो शाखें जो झुक जाती थी तूफान के मारे से, अब रुक जा, ये क्या कर रही है? माना तकदीर ने तुझसे सारे सहारे छीन लिए, मगर इस बच्चे से अपना एकमात्र सहारा क्यों छीन रही है? तूने जरा भी ख्याल किया है कि तेरे मरने के बाद इस बच्चे का क्या होगा?
नरगिस ने पतवार उठाई और अपने शोहर के काम को अंजाम देने लगी। अब नरगिस अपने शोहर की कश्ती से सैलानियों को डल झील के दर्शन करवाती, उसी आमदनी से घर भी चलाती और परवेज की परवरिश भी करती। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य स्थिति में आने लगा और नरगिस के होठों ने शायद फिर से मुस्कुराना सीख लिया। मगर नरगिस अनजान थी कि वक्त एक बार पुनः करवट लेगा। परवेज को ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई। नरगिस काम में इतना मसरूफ थी कि परवेज के सूखते हुए शरीर की वजह नहीं समझ पा रही थी। और एक दिन कश्ती को किनारे लगाकर जब नरगिस घर लौट रही थी तो तेज बुखार के कारण परवेज बिस्तर पर तड़प रहा था। नरगिस फौरन उसे अस्पताल लेकर गई, लेकिन अस्पताल पहुंचते तक परवेज खुदा को प्यारा हो गया। नरगिस की गोद में परवेज की जान चली गई और नरगिस को मानो जिसे अपनी आंखों पे यकीन न हुआ। मगर इस बार नरगिस रोई नहीं, अपने बेटे की लाश को कब्रिस्तान की ओर ले गई। नरगिस की आंखों में एक विशेष चमक थी, दुनिया के तानों का उस पर कोई असर न था। बेटे को दफन करने के बाद नरगिस ने फिर से पतवार उठाई और चली गई अपनी कश्ती की ओर।
अब मजबूत हैं वो शाखें जो झुक जाती थी तूफान के मारे से, अब मजबूत हैं वो शाखें जो झुक जाती थी तूफान की मारे से, कि दर्द भी शायद मिट जाता है एक नए दर्द के इंतजार से, एक नए दर्द के इंतजार से। ये दुनिया एक दरिया है, ये दुनिया एक दरिया है, यहाँ डूबती है बेसहारा कश्तियाँ कई, ढह जाते हैं बसते हुए आशियाने, उजड़ जाती हैं बस्तियाँ कई, उजड़ जाती हैं बस्तियाँ कई।
दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमारे सभी सहारे हमसे छिन जाते हैं। हम अपने आप को काफ़ी हेल्पलेस महसूस करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। परमेश्वर परीक्षा ज़रूर लेता है, लेकिन गिरने नहीं देता। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ ऐसे ही पसंद आती हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए ओनली ऑन रेडियो उड़ान। थैंक यू।
Stay tuned. MGU Positive.